महाराज जी ने कहा है कि भय से भाव और भाव से भक्ति होती है। इसका मतलब है कि जब मन में किसी का भय होता है तो उसके अंदर अपनी उन्नति का भाव पैदा होता है। इसको यूं समझें एक नेचुरल वे में आपको जब मौत का भय होता है, एक आम सांसारिक की बात ले लीजिए आप, उसको पता लग जाए मेरी 6 महीने में मौत हो जाएगी या साल भर में मौत हो जाएगी, वो कैंसर का पेशेंट है, डॉक्टर ने बता दिया उसको कि भाई तुम्हारी लाइफ 3 महीने और है, तो उसके अंदर एक निश्चय आ जाता है कि मौत तो निश्चित है, इलाज कोई मेरे रोग का है नहीं, अब संसार से मैंने जाना है। ऐसा व्यक्ति मोह के कारण अपने परिवार के कल्याण की सोचेगा, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में जो बेस्ट वो कर सकता है या सोच सकता है वो सोचने की कोशिश करेगा। इतनी गंभीरता से उसने पहले कभी नहीं सोचा होगा, जिस गंभीरता से वो तब सोचेगा जब उसको अपनी मौत का निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार अपने बारे में भी वो यही सोचेगा कि यदि मैंने ईश्वर का भजन करना है, यदि उसका रुझान उधर है कुछ, तब कहेगा अब तो जाना ही है, अब जो भी वक्त है प्रभु की याद में कर लूं। यदि कोई अच्छा कर्म उसका पेंडिंग है, सोचता रहा है फिर करूंगा, तो उसको भी वो 3 महीने के अंदर पूर्ण करने की कोशिश करेगा। ये उसके अंदर स्वाभाविक प्रक्रिया चलेगी। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि प्रेमी भय से भाव पैदा होता है। भाव का मतलब अपने कल्याण का या अपनी उन्नति का विचार उसके अंदर पैदा होता है, और जब उन्नति का, जिसमें भी वो उन्नति समझ रहा है अपनी, हो सकता है कोई पैसे के मामले में उन्नति समझे, हो सकता है बच्चों के लालन पालने के पालन करने के बारे में उन्नति समझे, या अपना जो है ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने में उन्नति समझे, जिस मार्ग में भी वो उन्नति समझता है उसके लिए वो उस पीरियड में गंभीर प्रयास करेगा। उसी को महाराज कह रहे हैं प्रेमी भय से भाव और भाव से भक्ति होती है। भक्ति का मतलब ये है जिस में मेरा कल्याण है, जिसमें मेरी उन्नति है, उसके लिए जीना, इसी का नाम भक्ति है। अब यहाँ बात आ रही है अध्यात्म की, इसलिए महाराज कह रहे हैं प्रेमी ईश्वर का भय या गुरु का भय होना जरूरी है। अब आपका प्रश्न ये है कि गुरु का भय क्यों जरूरी है। देखिए हम सब जानते हैं कि ईश्वर है और वो सर्वव्यापक है। वो ईश्वर सर्वव्यापक होने के बाद भी मेरा उससे संबंध कोई भी नहीं है। बचपन से जानता हूँ, जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, सुनता हूँ मैं, जो लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, सबके अंदर भाव रहता है कि ईश्वर है और वो सबको देख रहा है, हर जगह व्यापक है, लेकिन फिर भी लोग बेतहाशा पाप करते हैं, बेतहाशा चालाकियां करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को दुख देते हैं, ये आम संसार में देखने में आता है। इसका मतलब है कि ये सुनी सुनाई बात है कि ईश्वर है, उस ईश्वर का निश्चय नहीं। क्यों निश्चय नहीं है? क्योंकि उससे मेरा व्यक्तिगत संबंध कोई भी नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि वो है और हर पल मुझको वो देख रहा है और मेरी कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म उससे बचा हुआ नहीं है, जिसको वो नहीं जानता। और जो कुछ भी कर्म मैं उल्टा सीधा कर लूंगा उसका फल निश्चित रूप से दुख रूप में मुझको भोगना पड़ेगा, इसका भी होश नहीं। यदि इसका निश्चय आपके अंदर पक्का हो तो आप झूठ क्यों बोलोगे, किसी को धोखा क्यों दोगे, जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट किसी से क्यों लोगे? क्योंकि जायज प्रॉफिट लेना तो आपका अधिकार है, नाजायज प्रॉफिट लेना ये पाप है। खुद ही विचार करोगे तो हाँ बात तो गलती है, लोभ में आकर मैं ऐसा कर जाता हूं या लोगों की नकल करके मैं ऐसा कर जाता हूं। तो इसीलिए आप अपने कर्म में लापरवाह हो जाते हो यदि आपके अंदर ईश्वर का ठीक ठीक निश्चय नहीं होता। अब यह कहा जाता है गुरु भी ईश्वर ही है, जैसा कि महर्षि रमण कह रहे हैं कि संसार में गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। महाज भी समता ब्लास में लिख रहे हैं कि सत्पुरुषों का कर्म और उनकी देह न्यारी न्यारी होती आई है, अर्थात सबकी देह अलग अलग तरीके की होती है, उनके कर्म भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कबीर के कुछ और कर्म थे, राम के कुछ और कर्म थे, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान रूप है वो एक जैसा है, उस ज्ञान रूप को हम ईश्वर कहते हैं। वो कहते हैं वो एक ही धार का है, किसी भी सत्पुरुष में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि डिफरेंस है तो केवल नाम रूप का है जो माया है। तो इसका मतलब गुरु वास्तव में ईश्वर ही है, भूल कर भी कोई ना समझे कि ईश्वर में और गुरु में कोई डिफरेंस होता है 0.1% भी। यदि डिफरेंस है तो वो गुरु कहलाने योग्य नहीं है। और इसीलिए महाजी कह रहे हैं प्रेमी सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघार। यदि गुरु ईश्वर नहीं है तो आपके अंदर कैसे रम जाएगा वो? और समता विलास में भी निर्णय कर रहे हैं वो, वास्तव में ये वर्ड्स नोट करिए आप, वास्तव में गुरु शब्द रूप परमेश्वर है जो घट घट व्यापक है। अब गुरु को कोई वहम है क्या, या गुरु आपको मिसगाइड कर रहा है क्या कि तुम मुझको मानो? लेकिन फिर भी आपसे यह क्यों कहा जाता है कि ईश्वर छोड़कर गुरु का भय आप धारण करो? उसका बेसिक कारण यह है कि मैं अपने आप को नाम और रूप से जोड़ता हूं और अपने आप को नाम रूप करके ही जानता हूं। मेरा नाम यह है और मेरा रूप यह है, इससे ऊपर मेरी सोच ही नहीं। तो जब तक मैं अपने इस नाम रूप को अर्थात इस देह को अपना स्वरूप समझ रहा हूं, मैं ये हूं, तब तक आप निराकार ईश्वर निर्गुण ईश्वर की उपस्थिति से कभी भी भयभीत नहीं होगे, क्योंकि आपको भी ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में चाहिए। इसीलिए यह मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है भाई, भगवान हैं ये, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई कि इसमें प्राण है। अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंदिरों में क्यों होता है? इसलिए होता है कि पूजा करने वालों के अंदर ये निश्चय हो जाए ये मूर्ति नहीं है पत्थर की, इसमें प्राण है, ये जीवित ईश्वर है। तो पूजा करने वालों का भी एक विश्वास रहता है कि प्रभु मुझको देख रहे हैं और मैं प्रभु की उपासना कर रहा हूं। तब उसके अंदर भय भी होता है, गलत काम किया तो प्रभु मुझे सजा देंगे। और एक आशा भी रहती है कि यदि मैंने प्रभु की सही भक्ति की तो प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, मेरे काम बना देंगे, मेरी बुद्धि का सुधार कर देंगे। सैकड़ों तरह की आपके अंदर भावनाएं आ सकती हैं। ये तो डिपेंड करता है वो कैसा भक्त है। तो इसीलिए मेरी ये मजबूरी है कि जब तक मैं अपने आप को देह समझ रहा हूं, नाम रूप समझ रहा हूं, तब तक ईश्वर को भी मैं नाम रूप से जोड़ देता हूं। इसलिए महर्षि रमण से पूछा गया जब, महर्षि एक चीज बताइए, ये मूर्ति पूजा कहां तक उचित है? तब उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने आप को देह समझ रहे हो तब तक मूर्ति पूजा में कोई दोष नहीं। इसका मतलब जिस दिन भी आपके अंदर बुद्धि ये आ जाए कि मैं जीव हूं जो इस देह में रह रहा हूं, ये देह मेरी है, मैं देह नहीं, जिस दिन सत्संग सुनते सुनते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाए कि आप ये समझने लगो कि मुझको शास्त्रों में जीव करके संबोधन किया गया है, जीवात्मा करके संबोधन किया गया है, और इसीलिए गीता में लिखा गया है मेरे वास्ते कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर लेता है, उसी प्रकार मैं अपनी पुरानी देह त्याग कर नई धारण कर लेता हूं। तो मैं देह हुआ या वो हुआ जो देह धारण कर रहा है, जिसको देह दी जा रही है, प्रभु के द्वारा देह मुझको दी जा रही है ना, तो मैं तो देह से अलग हुआ ना। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल है ज्ञान का। इतना भी नहीं सीखा तो अध्यात्म विद्या आप क्या पढ़ोगे और क्या सीखोगे, क्या चलोगे? तो इसलिए गीता के प्रारंभ में ही ये बात सिखा दी गई। सारा ज्ञान तो बाद में दिया गया गीता, क्योंकि जब आपने अपने को समझा ही नहीं मैं कौन हूं, तो उस ज्ञान को सीखो कैसे, गीता के ज्ञान को? इसलिए वो क्लिष्ट हो जाता है, समझ में ही नहीं आता। गीता ज्ञान इसीलिए क्लिष्ट हो जाता है क्योंकि आपको अपने बारे में ही समझ नहीं आ रही है जो गीता शुरू में आपको समझा रही है। मैं देह हूं इस भाव को करके पूरी गीता पढ़ जाओ, 100 बार पढ़ लो, कुछ पल्ले नहीं पड़ना आपको। तो इसीलिए मेरी ये अज्ञान अवस्था है कि मैं अपने आप को देह समझता हूं, लेकिन मैं जो कुछ भी समझता हूं कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे। वो मेरे पिता हैं, वो मेरी माँ है, वो मेरे मालिक है और वो अंतर्यामी है। मुझको इस अज्ञान से बचाने की रचना वही रचेंगे। तो इसीलिए वो प्रभु, निराकार निर्गुण प्रभु, अंतर्यामी प्रभु अवतार रूप में सामने प्रकट होते हैं धरती पर। और करते क्या हैं वो? अब महाराज जी को जब आत्मलीन अवस्था प्राप्त हो गई, आत्मलीनता का मतलब होता है जीव भाव परमानेंट खत्म हो गया, इसी को कर्तापन भी कह देते हैं, इसी को अहम भाव भी कह देते हैं। 5 अवगुणों का जो अहंकार है वो अलग चीज है, अहम भाव ये अलग चीज है। ये सब लोग इतने सारे अलग अलग हैं, मैं अलग हूं इनसे, ये अहम भाव है। ईश्वर कभी सोचता है मैं इन सबसे अलग हूं? वो सर्वव्यापक है, और सर्वव्यापक है इसलिए जिस दिन आपको ईश्वर का बोध होगा उस दिन पता लगेगा कि ईश्वर सत्ता के अलावा दूसरी कोई सत्ता सारे ब्रह्मांड में है ही नहीं। सब जग रूप ब्रह्म का भेद भरम ना कोय, वाणी साफ करे। तो गुरु ने आपको यहीं पहुंचाना है। तो आपने जो समाज से उपासना सीखी है, उसके बारे में जो ईश्वर के बारे में कल्पनाएं बनाई हैं, किसी ने देवी माना, किसी ने शंकर माना, किसी ने विष्णु माना, सब अपने अपने तरीके से उपासना कर रहे हैं, तो बताइए मुझे कि जब तक आप पूर्ण गुरु का आसरा नहीं लोगे, इस व्यक्तिगत ईश्वर से छुटकारा कैसे मिलेगा? और इस व्यक्तिगत भाव से कि मैं देह हूं, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? विचार करके तो देखो जाए। इसीलिए आपसे कहा जाता है यदि आपने ईश्वर की सही उपासना करनी है तो पूर्ण गुरु का आसरा लेना ही पड़ेगा, पूर्ण गुरु के आगे समर्पण करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता। ये शास्त्रों का फाइनल निर्णय है। चाहे कितनी भी ऊंची उपासना आप क्यों ना करते हो, कितनी भी सिद्धियां आपके पास क्यों ना हो, लेकिन वो आपको केवल सांसारिक जीवन जीने के लिए मजबूर करेंगे, इससे ऊपर उठने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आपको होश ही नहीं आएगा कि मैं कौन हूं और ईश्वर क्या है, मेरा बंधन क्या है और मुक्ति क्या है, इसका होश ही नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए जिसने भी मोक्ष की प्राप्ति की, चाहे रामकृष्ण परमहंस ही क्यों ना हुए, वो तो ईश्वर को मां के रूप में देखते थे, और मैं आपसे बात कर रहा हूं इस तरह से उनसे बातें हुआ करती थी, तो इससे ज्यादा साक्षात ईश्वर किसको मिलेगा, विचार करके देखो। लेकिन मां हर समय तो सामने खड़ी नहीं रहती थी उनके, कभी सामने प्रकट होती थी, बात होती थी उनकी, उनका मार्गदर्शन भी करती थी, उनको सांत्वना भी देती थी, फिर गायब हो जाती थी। कई बार कई कई दिन तक दर्शन नहीं होते थे उनको, फिर वो रोते थे। एक बार तो यह हालत हो गई रामकृष्ण परमहंस की कि वो आंख फाड़ फाड़ के देखे मां के दर्शन नहीं हो रहे, और वेदना इतनी तीव्र थी, इच्छा इतनी तीव्र थी कि पलक नहीं झपक रहे थे वो, तो आंख उनकी खुली खुली रह गई। भाई मसल्स हैं, मसल्स तो टाइट हो जाएंगी जब आप उसको यूज नहीं करोगे तो। अब जब होश आया अपना, देखते हैं कि पलक तो झपक ही नहीं रही है मेरी, ये हो क्या गया मुझे। अब शीशे में अपना चेहरा देख रहे हैं, देख रहे हैं पलक खुली की खुली है। अब वो माँ के आगे फिर रो रहे हैं, माँ ये मुझे क्या हो गया, तू दर्शन ही नहीं दे रही है। तो विचार करो, जिस मां के आगे समर्पण है रामकृष्ण परमहंस का, वो मां नहीं सोचेगी इसके बारे में, कौन सोचेगा। क्योंकि मां अल्टीमेटली है तो ईश्वर ही, लेकिन वो व्यक्तिगत ईश्वर है। जो शिष्य जिस भाव से भज रहा है, उसी भाव से वो ईश्वर उसके सामने प्रकट होकर उसका मार्गदर्शन कर रहा है। इसीलिए गीता में आया, जो जिस भाव से मुझको भजता है, मैं उसी भाव से उसको सहायता करता हूं, उसके आगे प्रकट होता हूं। तो माँ ने क्या रचना रची, फिर तोतापुरी को उनके पास भेज दिया। अब जब तोतापुरी ने कहा कि तुम्हारी समाधि नहीं लगती है, मैं तुम्हारी समाधि लगवाऊंगा, क्योंकि समाधि वो अवस्था है जहां आकार खत्म हो जाता है, नाम रूप से मुक्ति मिलती है, तो उनका समर्पण पूर्ण था। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मेरे लिए तो सब कुछ मां है। हां, मां यदि कह देगी तब मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। चले गए वहां से, पूछा उन्होंने मां से, मां ने प्रकट होकर बताया उनको कि मैंने ही उसको तेरे पास भेजा है, तू उसके पास जा। फिर बड़े प्रेम से रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी के पास गए, उन्होंने एक कमरे में बिठाया उनको, और जो भी उन्होंने अपना मेथड अपनाया, उनकी समाधि लग गई, कमरा बंद करा, चले आए। 3 दिन तक समाधि नहीं टूटी उनकी, क्योंकि बिल्कुल प्योर शिष्य था वो, संसार का कोई उसके अंदर मोह, संसार की कोई वासना थी ही नहीं उसके अंदर। तो खुद उन्होंने कमरा खोल के उनकी समाधि से उनको उठाया, तो उसके बाद उनको पता लगा कि वास्तव में ईश्वर कौन है। तो इसीलिए जो पूर्ण ऋषि होता है या पूर्ण गुरु होता है, वो आपको ऐसे अधूरे रास्ते पर डालता ही नहीं है कि आपको आगे चल के भटकना पड़े। आप उसके मार्गदर्शन के अनुसार यदि साधना कर रहे हो, उसके मार्गदर्शन के अनुसार यदि कर्म कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी प्रगति राइट डायरेक्शन में निरंतर होती रहेगी, और अंतिम अवस्था में पहुंचाकर ही गुरु आपको छोड़ेगा। तो इसीलिए यहां गुरु के भय की बात आ रही है, क्योंकि गुरु के बारे में जानते हो, गुरु ने वाणी प्रकट की है, गुरु के बारे में जानते हो, उसने समता विलास लिखी है। गुरु के बारे में जानते हो, उसने जीवन में चलकर दिखाया है कि कैसी साधना होती है, निष्काम कर्म कैसे होते हैं, कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपने साथ रखना पड़ता है और कितनी बात का पक्का होता है गुरु, जो कह देगा वो करेगा वो। तो पूरा जीवन उसका प्रैक्टिकल शास्त्र होता है। इसीलिए महाजन का प्रेमी, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी जो अपने जीवन में घटाई ना हो। जो बात उन्होंने संत विलास में लिखी, जो संत प्रकाश वाणी में प्रकट हुई, वो जीवन उन्होंने जीकर दिखाया है, वो प्रैक्टिकल सत्य है, थ्योरी नहीं है वहां पर कोई भी। इसलिए ऐसे गुरु के परायण जब होते हो तब आपके अंदर हिम्मत आ जाती है कि गुरु मेरे संग है। गुरु कह रहा है, गुरु की वाणी कह रही है, बाल न बीका कर सके चक्रवर्त भूपा। जो प्रभु का भक्त है, चक्रवर्ती राजा भी उसका कुछ नहीं कर सकता, उसको पावर ही नहीं है कोई भी। संपूर्ण पावर गुरु के पास है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर। संपूर्ण प्रकृति मैं इस शरीर के उसके हुक्म में चल रही है। इसलिए आपको सिखाया जाता है कि ईश्वर अंतर्यामी है, गुरु अंतर्यामी है। और गीता भी यही कह रही है आपसे, भगवान कृष्ण भी अर्जुन को ये कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है वो उनके हृदय में विद्यमान है। और हृदय में बैठे बैठे क्या कर रहा है वो? भ्रामयन सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानी माया। इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित जीवों को, यानी मुझको, अपनी माया से संसार में वो भरमा रहा है, देह की क्रियाएं करवा रहा है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो मुझे तो अपना प्रारब्ध पता ही नहीं, मुझे यह भी पता नहीं कल को क्या होने वाला है। आप कोई भी कर्म की प्लानिंग कर लो, आपको पता है 20 साल जियोगे आप? प्लानिंग तो कर सकते हो आप, लेकिन पूर्ण करने का मौका भी मिलेगा आपको पता है क्या? आपके अपने ही आपके सामने से बिछड़ जाते हैं। आप सोचते रहे तो ये हो क्या गया? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए हम एक कंफ्यूजन में जीते हैं, एक भ्रम में जीते हैं। हमको पता ही नहीं है कि मेरी जीवन लीला ईश्वर ने निश्चित की हुई है और इस देह रूपी रथ को ईश्वर खुद हांक रहे हैं। और मैं इस अहंकार में बैठा हुआ हूं कि मैं देह हूं। तो इसीलिए इन शास्त्रों के मर्म को जब तक आप गहराई से नहीं पढ़ते, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सोचा होगा, तभी यह प्रश्न उठ रहा है आपके अंदर। अन्य प्रेमियों ने पढ़ा होगा, उनके मन में प्रश्न क्यों नहीं उठाइए? आपके मन में क्यों उठा? क्योंकि आपने सोचा होगा इसकी जरूरत क्या है आखिरकार। एक प्रेमी ने भी पूछा था महाजी से, महाजी ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, गुरु से प्रेम करना चाहिए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उनसे भय करना चाहिए, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो भय का मतलब वो भय नहीं है जो संसार में भयभीत होते रहते हैं हम विभिन्न चीजों से, ये भय दूसरी तरीके का है। ये भय उस प्रकार का है कि वो गुरु अंतर्यामी है, घट घट की जानने वाला है, हर कर्म को वो मेरे वो देख रहा है, और जो मैंने वायदे किए हैं उसकी भी वो मुझको याद दिला रहा है। यदि मैं उससे किए हुए वायदे के अनुसार नहीं चल रहा हूं तो फिर मेरी सजा तैयार खड़ी हुई। तो आपका गुरु के प्रति वैसे ही संबंध रहता है जैसा आपका घर में अपनी माँ के प्रति रहता है, जो हर वक्त आप पर सख्त नजर रखती है। और सख्त नजर कैसी होती है माँ की? वो केवल आपके भले के लिए सोचती है, क्योंकि माँ की नजर की पहचान यही तो है, केवल आपके भले के लिए सोचती है। उसकी सख्ती आपकी भलाई के लिए। तो गुरु का जो भय है उसी प्रकार का है जिस पर घर में माँ का भय होता है। तो आप लापरवाह नहीं होते हो। यदि माँ का भय है तो आप लापरवाह नहीं होते हो, गलत संग नहीं पकड़ते हो, चोरियां नहीं करते हो, माँ के सामने झूठ नहीं बोलते हो, क्योंकि आपके अंदर भाव ये बना हुआ है कि माँ सख्त तो है लेकिन मेरी भलाई की सोचती है। तो यही भाव आपका गुरु के प्रति हो जाता है कि गुरु सख्त तो है। माँ जी कहते भी थे, प्रेमी बाहर से ये मीठे मीठे हैं लेकिन अंदर से बड़े सख्त हैं, अंदर से बड़े सख्त हैं। तो इसीलिए जब गुरु का भय होता है आपके अंदर तो आप अलर्ट रहते हो ठीक कर्म करने के लिए, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलने के लिए। आप लापरवाह नहीं हो जाते हो कि गुरु से वायदा तो कर लिया कि मैं चलूँगा और चल रहा हूँ अपनी मनमानी से, सारे कर्म कर रहा हूँ अपनी मनमानी से। तो इसीलिए कहीं गलती ना हो जाए तो मैं गुरु की बात को बड़ी बारीकी से पढ़ने की समझने की कोशिश करता हूँ, बार बार उस पर मनन करता हूँ, गहरा विचार करता हूँ, ताकि मेरी उन्नति निरंतर होती रहे और संसारियों के चक्कर में फंसकर, क्योंकि संसारी तो अज्ञानी है, घर वाले भी कहेंगे तू कहाँ चला, मेरे अनुसार चल, लेकिन जो पक्का शिष्य है, जो समझदार शिष्य है, वो कहेगा उसका प्रतिकार तो नहीं करता, वो शांत रहता है, प्रतिकार करेगा तो लड़ाइयाँ होंगी घर में। वो होशियार होता है, वो गुरु की बात अंदर से समझता है और करता वही है जो गुरु ने कहा है, लेकिन बाहर से घर वालों की निष्काम सेवा के रूप में उनकी सहायता करता रहता है, लेकिन जिंदगी को बर्बाद नहीं करता वो उनके कहने से, क्योंकि वो समझ ही नहीं है उनकी। इसको समझ है, समझदार होने के बाद भी यदि जिंदगी बर्बाद करे घर वालों के कहने के अनुसार चले तो काहे का समझदार हुआ। दो लोग आपकी जिंदगी में आ जाए, एक मूर्ख आ जाए एक बुद्धिमान आ जाए, तो मूर्ख के कहने अनुसार चलोगे या बुद्धिमान के कहने के अनुसार चलोगे? यदि मूर्ख के कहने के अनुसार चल रहे हो तो आप भी मूर्ख हुए, कहे गए बुद्धिमान। तो इसीलिए छुटकारा कोई नहीं है, आप बहाना कोई नहीं बना सकते। आपने अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी प्रगति के बारे में गहराई से सोचा है तो गुरु का भय आपके अंदर होना ही चाहिए। और जिसके बारे में भय होता है उसकी हर समय याद बनी रहती है, हर समय याद बनी रहती है उसकी। तो ये प्रारंभिक चीज है, प्रारंभ में गुरु का भय होता है, बाद में गुरु से प्रेम हो जाता है कि प्रभु तुम तो मेरे हो और अंतर्यामी हो। जितने आपके दोष जब कम होते हैं ना, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह का जो अहंकार है आपके अंदर, मैं देह हूं, ये देह मद इसको बोलते हैं, ये देह मद है, जब ये कमजोर पड़ता है तब आपको अपने बारे में होश आ जाता है कि मैं जीव हूं, मैं वो हूं जिसको मन परेशान करता है, मैं वो हूं जिसको देह परेशान करती है, मैं वो हूं जिसको संसार परेशान करता है, जो सुखी होता है जो दुखी होता है, जिस पर सुख और दुख का असर पड़ रहा है वो मैं हूं, इसलिए मैं जिंदा वस्तु है। ना मन जिंदा वस्तु है ना देह जिंदा वस्तु है, ये ईश्वर के कारण जिंदा नजर आ रहा है, उस चेतन सत्ता के कारण जिंदा नजर आ रहा है, उस गुरु सत्ता के कारण जिंदा नजर आ रहा है। तो गुरु मेरा प्राण है, ईश्वर मेरा प्राण है, वो मेरा जीवन है। तो इसीलिए ये जीव जब अपने होश में आता है तब फिर ये लापरवाह नहीं होता। तो इसीलिए जब महाजी कह रहे हैं कि सतगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाट उघाड़, ये बात मेरी समझ में आ जाती है। तो गुरु सिमरन के द्वारा मुझको अंदर लाना चाह रहा है और परहेज के द्वारा मन की विकृतियों से बचाना चाह रहा है। तो गुरु के बताए हुए 5 नियम मैं पालन करता हूं, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से पालन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इनका पालन ना करना जिंदगी की बर्बादी है। यहां आपकी कोई चॉइस काम नहीं करेगी, मन चाहो तो ऐसा करो, कर सकते हो आप, लेकिन आपकी जिंदगी की बर्बादी। तो गुरु आपकी जिंदगी को, इतना कीमती जन्म बचाने आया है, और यदि आपको गुरु से प्रेम है तो फिर उसकी बात कैसे टालोगे आप? इसीलिए आप गुरु की हर बात को बारीकी से समझने की कोशिश करते हो, जो मनन के द्वारा समझ में आती है। इसलिए पूरी की पूरी संता विलास आपका गुरु है, वो लाइव गुरु है। इसीलिए इस विचार को सत विचार कहते हैं, और सत कहते हैं ईश्वर को। ये डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा दिया हुआ विचार है, जो आपने करना ही है यदि आपको मोक्ष चाहिए, या मन के बंधन से छुटकारा चाहिए, या कर्तापन से छुटकारा चाहिए, या इच्छाओं से छुटकारा चाहिए, या यूं कहिए कि जिंदगी के दुख से छुटकारा चाहिए। तो दूसरा कोई जीने का रास्ता आपके लिए बचा ही नहीं है। एकमात्र रास्ता है, पहले तो गुरु से भय। इस भय के कारण आपके अंदर अपनी उन्नति का भाव पैदा होगा, विचार पैदा होगा। उस विचार के अनुसार, उस विचार के अनुसार जब आप यात्रा तय करोगे, तब आपको अंतर्यामी गुरु से प्रेम होगा। और वो ऐसा प्रेम होता है कि यदि आपकी कहीं रुकावट आ रही है, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपके मन में ये भाव आ रहा है कि महाराज जी काश शरीर रूप में सामने होते तो मैं आज उनसे ये बात पूछ लेता, तो याद रखिए, यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप जीव हो और वो ईश्वर है, और दोनों ही अंदर मौजूद हैं। लेकिन आप अभी नाम रूप के बंधन में हो, गुरु इस बात को जानता है, इसलिए अंदर ही आपके प्रकट होकर आपकी भाषा में आपकी बात का उत्तर वो दे देगा। ये कोई कहानी किस्से वाली बात नहीं है। मैं उन लोगों को जानता हूं लेकिन नाम नहीं ले सकता, मजबूरी। तो इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भक्तों के आगे प्रभु जिस रूप में वो भसते हैं उनको उस रूप में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक सत्ता है और वो मेरा पिता है, मेरी माँ है। मेरे दुख तकलीफ को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? लेकिन मैं दुख तकलीफ समझता हूँ किस बात में? कि पांच विकारों की इच्छाएं हैं, उसके कारण मैं परेशान होता हूँ। तो उसको पूरी करेगा ईश्वर, आपके विकार बढ़ाएगा वो। यदि आप उससे प्रेम करते हो, वो आपका कल्याण चाहता है, तो इन विकारों से मुक्त करेगा आपको। हो सकता है इतने कष्ट दे आपको कि इन पांच विकारों के भोग विलास भूल ही जाओ आप, इतने कष्ट दे आपको, लेकिन वो कल्याण देने वाला कष्ट होगा, कल्याण करने वाला कष्ट होगा। इसीलिए ईश्वर आपको कई बार परीक्षा में डाल देता है, मुसीबतों में डाल देता है, ताकि तुझको पता लग जाए संसार में तेरा कोई नहीं है, तेरे प्राण ईश्वर स्वयं है। जीना है तो उनके लिए जी, संसार में केवल तू निष्काम सेवा कर, चाहे परिवार के लोग हों चाहे संसार के लोग हों, वहां कर्तव्य भाव से उनके कष्ट दूर करने की कोशिश कर, जो तेरी सामर्थ्य के अंतर्गत है। यदि सामर्थ्य में तेरी नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु इनकी बेचैनी तुम ही हरो, तुम ही मालिक हो, मैं क्या कर सकता हूं। यदि कोई सामर्थ्य प्रभु ने आपको दी है तो ईमानदारी से, निष्काम भाव से, मोह करके नहीं, हम परिवार में जैसे मोह करके करते ना, मोह करके नहीं, निष्काम भाव से उनके कष्ट दूर करने की कोशिश करो। बस यहीं तक आपका उनके साथ संबंध है, बाकी असली संबंध अंतर्यामी गुरु से आपका है, वो हर वक्त आपके मन में और तन में रमा हुआ है, वो हर पल आपको देख रहा है, और आप उसकी प्रेजेंस का अंदर हर पल अनुभव कर रहे हो, तो गुरु प्रेम की यही स्थिति होती है। इसीलिए ये गुरु का जो भय है, ये आपको ईश्वर प्रेम की ओर ले जाता है और मोक्ष प्रदान कराता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।